तक कोई वर नहीं मांगा, अब अंतिम समय में तुम वर मांग रहे हो। पर तो प्रहलाद महाराज जी ने भी कहा था कि हमें वर की जरूरत नहीं है, वर देने की अभिलाषा समाप्त हो गई, और आप इधर वर मांगते हैं, कहाँ हमको वर मांगने की जरूरत है, क्या मांगते हो? तो हमको संसार में विश्व की सबसे सुंदरी आदमी इस अभी जब तक है, अभी है जिस समय है, सबसे सुंदर कोई स्त्री हमको मिले, और संसार में सबसे बड़ा वैभव मिले, और संसार में सबसे अधिक प्रशंसा मिले। भगवान ने कहा जैसे ये विषय लोग मांगते हैं, आपने क्यों मांगा? तो हमने इसलिए मांगा कि लोग भगवान का भजन करने से डरते हैं, शंकर जी का भजन करने से नहीं डरेंगे, गणेश जी का भजन करने से नहीं डरेंगे, और जो जितना देवता देवी हैं वो नहीं डरेंगे। क्यों? वो एक पुत्र मांगेंगे तो उनको शंकर जी दो पुत्र जुड़वा पुत्र दे देंगे, गणेश जी भी एक थोड़ा सा धन मांगो अधिक धन दे देंगे। ऐसे दुर्गा देवी हैं, वो हमारे शास्त्रों में देखा जैसा पार्वती जी की विवाह जिस लड़की का नहीं होता है तो किसकी सेवा करती है? आराधना
उमा सती,
उमा जी की, दुर्गा की, ये सब करते हैं नहीं कि ये सब पूजा
करती है उमा सती,
तो ये सब पूजा करती है, किंतु इसके लिए कृष्ण की, नारायण की, भगवान की कोई आराधना नहीं करता धन के लिए ये सब। क्यों? वो जानते हैं कि यदि हम नारायण को या कृष्ण को या रामचंद्र जी की आराधना करेंगे धन के लिए, तो सबसे पहले हमारा धन रहा सहा हुआ वो हटा दे, धन को भी ध्वंस कर। सुंदरी स्त्री मांगेंगे तो ऐसा कर देंगे विवाह ही नहीं हो। कृष्ण में ये सब चीजें हैं, क्यों? वो निष्कपट रूप से जीवों का कल्याण चाहते हैं। कोई भजन करने लग जाए ना तो नौकरी ढूंढेगा तो उसकी नौकरी नहीं लगेगी, विवाह शादी करना चाहे तो वो सहजी ने कहिए ये गले में तो माला बांधती है, लकड़ी बांधती है, इसके साथ में हम शादी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस डर से कि लोग समझें, युधिष्ठिर महाराज जी भगवान की भक्ति कृष्ण की करते हैं, इनके पास में धन भी है और सुंदरी स्त्री है, सुंदर लड़के नाती नातिनी है, और बड़ी विश्व में इनकी प्रतिष्ठा है, तो लोग डरेंगे नहीं। अब तब से भगवान का सेवा आपका भजन करेंगे, इसलिए हमको अपने लिए जरूरत नहीं है, जगत के लोग आपके तरफ में जरा इधर में आए इसके लिए मैं ऐसा। देखिए कितना उन्नत भाव, प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमारी इच्छाएं सब समाप्त हो जाए कम, और ये करें कामना हमारी हो और कामना पूर्ण हो, और संसार के लोग भगवान के तरफ में आए चाहे हमारी जो कुछ दुर्गति हो, जो कुछ भी हो जाए, किंतु इन लोगों को भगवान के तरफ, इसलिए ये शेष है। भगवान भी ऐसे हैं कि इन लोगों से अपने संबंध कायम किया, भाई बने, अपनी बहन की साथ इनकी भाइयों की शादी कर दी, और घरेलू जैसा संबंध रहा जब तक इनके घर पर जाए। इसलिए कहते हैं युधिष्ठिर जी ये हरिदास हैं, हरिदास इसे कहते हैं, तन मन वचन और सब प्रकार से जो भगवान की सेवा करता है, और हरिदास वर हैं कौन? उद्धव जी। वो क्यों हैं? वो कृष्ण के सखा भी हैं, मंत्री भी हैं, उनके सेनापति भी हैं, उनके प्राण बंधु भी हैं, और ऐसे हैं जहाँ कृष्ण नहीं जा सकते हैं किसी कारण से, अपने प्रतिनिधि के रूप में इनको ही भेजे। ऐसे उद्धव जी बुद्धिमान, कृष्ण के प्रिय, कृष्ण उन पर विश्वास रखते हैं। युधिष्ठिर महाराज जी को नहीं भेजेंगे यहाँ वृंदावन में गोपियों के पास, वो आ भी नहीं सकते, किंतु इनको भेजे। इसलिए कृष्ण के भीतर की इच्छा को भी पूर्ण करने वाले ये उद्धव जी हैं, वो युधिष्ठिर जी से भी। जिस काम को मान लें कि उद्धव जी गए ब्रज में, कितना रहे वहां पर, कितने दिन?
छह महीना, दस महीना,
कोई निश्चित नहीं है, केचित माता कुछ महीनों तक रहे, कोई कहते 10 महीने, कोई कुछ कहते हैं, कोई 6 महीने, कोई 4 महीने, कोई 2 महीने भी कहते थे, 2 महीने भी। खैर जितने दिन रहे चले क्यों आए, जब उन्होंने देखा गोपियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, ब्रजवासियों का प्रेम सबसे श्रेष्ठ है और ब्रजवासियों में गोपियों का प्रेम सर्वोत्तम है और उनकी चरण की धूलि होने की प्रार्थना की, तो खुद चले क्यों आए मथुरा में कृष्ण के पास में, वहीं पर रह जाते। कोई गोपी गो या एक बछड़ा भी, एक तृण भी ब्रज का मथुरा में आया, कोई नहीं आया, तो उधर भी क्यों चले गए। तो इससे मालूम होता है उद्धव जी वर तो है, वर्ज नहीं। और गिरिराज क्या करते हैं, उद्धव जी यदि मान ले कि वृंदावन में रहे और कृष्ण का रास हो तो उद्धव जी उसमें सम्मिलित होंगे कि नहीं। जसोदा नंद के प्रेम को भी नहीं समझ पाते, नंद बाबा से कहते हैं कि आप परम सौभाग्यवान हैं क्योंकि कृष्ण आपके बेटे हैं और ये स्वयं भगवान कृष्ण चंद्र हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं, ऐसा किसी को होता है, किंतु कृष्ण आपके। उन्होंने कहा कि कृष्ण मेरे पुत्र हैं और वो भगवान हैं। अरे उद्धव, मैं तो तुमको समझता था जो कुछ बुद्धि तुमको आई है कृष्ण के साथ में रहने से, किंतु तुमको देखता हूँ कि तुम नीरा बालक है, अभी अकल के दांत जो हैं वो भी तुमको नहीं आई। उन्होंने देखा कि बाबा ये क्या कह रहे हैं, मैं बड़े बड़े ज्ञानियों को तत्वों को देश देता हूँ, कृष्ण से बराबरी में बैठ करके तत्व विचार करता हूँ, बृहस्पति का शिष्य हूँ, साधारण तो हूँ नहीं। अच्छा ये बतलाओ, किसी का कोई एक कोई कांच का टुकड़ा था और उसको लेकर के खेल रहा था और वो गुम हो गया, किसी ने कह दिया कि ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा नहीं था, ये तो हीरा का टुकड़ा था जिसका दाम करोड़ों रुपये से भी अधिक है, रुपया दाम इसका, तब वो रोने लगता है। तू वैसे ही तू कहता है मैं तो अपने इस कृष्ण को अपना बालक अपना पुत्र समझ रहा, अब तुमने कह दिया ये तो भगवान है, तो इसकी कीमत बहुत, भगवान भी हमारे यहाँ आकर के और मैं भगवान की सेवा नहीं कर सका, उद्धव इससे बड़ा दुख हो सकता है, कृष्ण को अपने हाथों से गवा दिया, इसे कोई दुख की बात और हो सकती है। साधारण लड़का रहता वो मर भी जाता कोई बात नहीं है, या चला जाता कहीं, और कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ आकर के हमारे घर में रहे और उनको मैं समझ नहीं सका, उनको प्रेम नहीं कर सका, अपने प्रेम से उनको बांध नहीं सका और हाथ से वो चीज निकल गई, और तुम उद्धव कहता है कि तुम बड़े ये सौभाग्यवान है कि जगत में यदि कोई सबसे दुर्भागा है तो मैं, और रोने लगे विलाप करने लगे ये कह कर। तो उस समय में उद्धव जी सोच रहे हैं सतपुत्र ने हमने ये गलती की, हमको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सतपुत्र में ये ठीक कहते हैं किंतु मैंने गलती कहा, तुम्हारा कर लो गलती की या ठीक किया। समस्त शास्त्र कहते हैं वही मैंने बात कही, किंतु यहां पर वही चीज गलत यहां पर हो रही है, मैं इनको संतना देने के लिए यही कहा महाराज आपका बेटा ये साधारण नहीं है, भगवान है, तो हमने कौन सी गलती की, इनको तो सभी शास्त्र कहते हैं भगवान, और इससे ये रोने लगते हैं, और तो मैंने क्या गलती की, मैंने गलती तक कुछ नहीं की, किंतु इनके सामने में और क्या कहूँ, और इनका विरह मैंने बढ़ा दिया, मैं आता सांत्वना देने के लिए इनका विरह बढ़ गया, जब नंद बाबा को ही प्रबोधित नहीं कर सके सांत्वना नहीं दे सके तो गोपियों को क्या वो सांत्वना दे, बस चित्र लेखे से रह गए और बहुत दूर से देखा, वो भाव उनके अंदर में नहीं आया इसलिए वो लौट गए। यदि उद्धव में ऐसी कोई भी भावना आ जाती है कि मैं ब्रज का एक पत्ता भी हूँ, एक घास भी हूँ, तो वो जाते नहीं। दूसरी बात, उन्होंने ये चिंता किया कृष्ण का भजन करने से ऐसा होता है जो सबसे सर्वोत्तम भक्त, और उनको इतना दुख, कृष्ण ने सदा के लिए उनको छोड़ दिया और ये तड़प रहे हैं और तड़प रहे हैं, और कहूँ यदि मैं भी ऐसा होगा तो हमको भी छोड़ देंगे तो मैं भी जीवन भर तड़प रहूंगा, इसलिए वो छोड़ करके चले गए। रोना तो अच्छा माना किंतु रोना नहीं चाहा, इसलिए चले गए वहां। गिरिराज गोवर्धन गए, गिरिराज जी के सामने में रास हुआ कि नहीं? कृष्ण वहां ने कितनी लीलाएं की, सब सखाओं के साथ में लीलाएं, ये उद्धव जी के सखा हो करके ऐसे करते क्यों गया? उसको ले जाओ साथ में, ऐसी लीला नहीं कर सकते जो उद्धव के साथ उन्होंने किराए, इसलिए वहां पर कह रहे हैं दास कौन है, तो इसलिए तीनों में गिरिराज को ही श्रेष्ठ माना, इसीलिए उन्होंने अपने तन से, मन से, विचार से, वक्त से, बुद्धि से संपूर्ण रूप लगा दिया कृष्ण की सेवा में गिरिराज गोवर्धन, और उनको अपने हृदय में भी बैठाया। नंदगांव में शंकर जी ने भी बिठाया है, बिठाने पर भी रास उन्होंने वहां पर तो नहीं हुआ ना, हुआ रास नहीं हुआ, वहां पर कोई गोपी नहीं उठी और उसको मनाने के लिए नहीं गए, ये सब चीजें वहां पर नहीं, इसलिए उस शंकर जी का था गोपेश नंदीश्वर, उसे भी गिरिराज गोवर्धन बहुत अच्छा। सेवा किसको कहते हैं, दास कौन है जो दास तन मन विद्या बुद्धि विचार सब के द्वारा, समस्त इंद्रियों के द्वारा प्रभु की सेवा करता है और उस सेवा करके आनंदित होता है और प्रभु को भी आनंदित करता है। इनके द्वारा सेवा करके प्रभु जब आनंदित होंगे तब उस आनंद को देख करके ये भी आनंदित होगा, प्रभु के आनंद को देख करके, ये सेवक सेवक, ये हरिदास भगवान का दास। जो सेवक बहुत भगवान की सेवा में क्लेश मांगता है, आज रात भर में उठा क्या कर रहा था, पंखे ठाकुर जी को चला रहा था, रात भर भीत नहीं है, ये क्या हुआ, क्लेश हुआ कि नहीं? ठाकुर जी की सेवा में क्लेश हुआ, इसके द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं हुए। जिसमें वो प्रतिपद में आनंद पाता, प्रभु को आनंद देता है और उसके द्वारा स्वयं आनंदित होता है, उसको कहते हैं हरिदास। और उसमें उस सेवा में अपना कुछ क्लेश समझता है, दुख समझता है, वो प्रभु सेवा ग्रहण नहीं करते, करते हैं आगत्या, आगत्या ना क्या
आनंद पाए,
वो करता है तो अच्छा ठीक है, पानी दिया पी लिया,
कोई उपाय ना दिया,
पानी दिया ना, देखा जाओ दूसरा कोई है नहीं तो इस सेवक ने दे दिया, प्यास लगी है, देखें जैसे नहीं लेंगे तो ये दुखी होगा, अच्छा नहीं, या तो लेकर के रख देंगे नहीं तो दिखलाने के लिए घुट पी लिया रख, वो खोजेंगे जो प्रेम से देता है सेवक ना, इस पानी में देखा ग्लास मजा हुआ नहीं और ये पानी शुद्ध नहीं दिया और सुशीतल नहीं है, इसलिए वो पानी तो ले लिया किंतु उसे आनंद नहीं। जब सेवक प्रेम से सुशीतल जल जैसा देना चाहिए वो देगा, देखेगा प्रभु का मुख जो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं तो ये भी प्रसन्न हो जाए, तो ये सेवक सेवक इसी के लिए कह रहे हैं। जो दास काय क्लेश समझ करके प्रभु की सेवा में क्लेश समझता है सेवा को और सेवा करता है, या प्रभु को कोई उपाय न दे करके प्रभु उसकी सेवा को ले लेते हैं, किंतु यथार्थ मन प्रसन्न चित्त होकर के नहीं लेते उस देश को, मन अनमने मन से उसको श्रेष्ठ सेवक नहीं करते। तो ये प्रभु कैसे जान लेंगे? तो प्रभु नहीं जानेंगे तो प्रभु कैसे हो गए? प्रभु समझ लेंगे जैसे कैसी भावना से कौन कैसा देगा। गोवर्धन पर्वत भगवान के ऐसे ही श्रेष्ठ सेवक हैं जो प्रभु उनकी प्रत्येक सेवा को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। कैसे करते हैं? स्वप्रेष्ठ हस्तांबुज सौ कुमारी सुखानुभूते रति भूमि दुखते महेंद्र बज्रा हतिम गजान गोवर्धनों में विशता। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का स्वप्रेष्ठ हस्तांबुज सौ कुमारी कृष्ण ने अपने सुकोमल हाथों पर और सुकोमल अपनी कोमल अंगुली पर और गोवर्धन जी को जब धारण किया तो आनंद के मारे उनका स्पर्श पाकर के गोवर्धन महाराज सब जितने कष्ट हैं सब भूल गए। उनको रोमांच हो आया, बड़ा आनंद आया और इस आनंद के मारे इंद्र जी ने जो कराए जिससे उनको कुछ टुकड़े टुकड़े भी हो गए उसको समझा क्या मिला आनंद के मारे अपने उनको कुछ कष्ट ही नहीं है कि गोवर्धन उन्होंने इंद्र ने हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए, हम सब वज्र से मार रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इसलिए कहते हैं महेंद्र वज्र अतिम गजान। उनको पता ही नहीं ये वज्र वो चला रहा है। जैसे बाली थे ना, राम को पकड़ लिया, वो उसे युद्ध करने गया तो वो पकड़ लिया और पकड़ करके बगल में दबा लिया और सूर्य को जल दे रहा है। जब सूर्य को जल दे रहा है तो ये दांत से काटने लग गया, नखों से काटने लगा, बहुत जोर से किलकारी मार रहा है और वो अपने ध्यान में मग्न होकर के सूर्य को पूजा दे रहे। करते 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 देखा जैसे खुजलाहट होने मैंने वो काट रहा है दांत से, तो उनको याद ही नहीं गई जैसे इसमें राम को हमने दबा रखा है। तो उन्होंने थोड़ा सा ऐसे किया, जल देते देते ऐसे ही किया जहां तां निकल करके भागा। ऐसे ही इनको भगवान के स्पर्श से ही, चरणों के स्पर्श से या हाथों के स्पर्श से इनको कोई दुखी नहीं मालूम होता। ऐसा सेवक होना चाहिए प्रभु की सेवा में, गुरु जी की सेवा में। यदि प्राण भी दे देता है तो उसमें उसको यदि उसमें दुख होता। गुरु महाराज आरामी यही मठे थे आपने रेखे छे आमी आर यही मठे थकब ना भाई क्यों की हल এত কষ্ট দুঃখ আর মহা মুশকিল আমি মঠ চালাই হম মঠ নেই চালা সকতে হমারে লিয়ে সম্ভব নেই আপ দূসরি কে ব্যবস্থা কর লিজে আর পাঁচ দিন কে অন্দর মে ব্যবস্থা করতে তো ঠিক হ্যায় আর নেই তো মে ইয়াহ সে কহাঁ চলা যায়গা আপকো পতাহি নেই লাগেগা যে কহাঁ চলে যায়গা পতাহি নেই চলেগা ইয়ে কাসা সুন্দর সেবক ऐसा सेवक नहीं। इसी समय में सेवक की सेवकाई समझ भगवान के लिए कृष्ण और अर्जुन गए बकुर वाहन में कौन था कहा जा अपना भाई ये चीर करके आधा दे दो और तुम्हारे मोर भर ये चीर करके देना है। तो वो चीरने लगे उनके लड़का और उनकी स्त्री। उन्होंने सोचा कि आज इनके काम में ये शरीर तो एक दिन सड़ गल करके खत्म हो जाता, आज किसी साधु संतों की सेवा में ये लग बाएं आंख से हटात आंसू निकल गया। कृष्णा जी ने रोको 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 बस थामो 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 बस रोको क्यों? अरे भाई ये रो रहा है, हम रोते भी नहीं, हम तो हंसना चाहते थे, हंसता बातें करके तब हमारा बात खाएगा ना तो नहीं खाएगा। जैसे ये बाया आंख दाहिना हाथ बड़ा प्रसन्न है और बाया कहा जी मैंने कौन सा दोष किया कि मैं भगवान और वैष्णव की कोई सेवा में नहीं आ सका, इसलिए ऐसा इसको भी लगा ले तो अभी बंद हो जाएगा। बस कृष्ण प्रसन्न हो गए, उसको रोक दिया और फिर उसको शरीर दिया। भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में ही यदि हम त्रस्त हो गए, भाग खड़े हुए, तब हम साधन वजन क्या करें? तब तक अंगूठे के बल में 10,000 वर्ष बिना खाए पिए निराहार या पानी पी करके कैसे भजन करेंगे? पैर ऊपर उठा करके ध्रुव की समान। इसलिए भाई भजन ऐसा करना चाहिए गिरिराज जैसा, तब होगा भजन, नहीं तो भजन नहीं होगा। इसके लिए तैयार है, भगवान या गुरु भी बीच बीच में ऐसी परीक्षा थोड़ी सी दे देते हैं, उसमें यदि सफल हो गया तो ठीक। नाम हरिदास ठाकुर के जैसा बना देंगे अवस्था, हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पिटवा दिया ना, यदि सस्ता मान समझेगा कोई तो, और तब दिखला देंगे यहाँ हमारे भक्त कैसे। इसलिए गुरु वैष्णव की आदेश को समझो, जैसे बहुत दुर्लभ प्रेम है, इसके लिए हमको लाख बार अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ सकती है, तब वो साधन हो। इसलिए गिरिराज जी जब भागवत में भी कहा गया इसी श्लोक में, मानव तनोत सह गो गणयोग तयो यत् पानीय सू यत् कंदर कंदर। गिरिराज गोवर्धन में जब उनका स्पर्श कृष्ण के चरणों का होता है, चरण स्पर्श होता है, तो उनको पुलक होने लगता है। पुलक माने क्या? जितने खासे हैं एकदम, और जितनी पेड़ पौधे जितने हैं लतरु लताएं सब फूल एकदम हो जाते हैं,
फूलों से
मन प्रसन्न होकर के पुलकित हो रहे हैं। पेड़ों से खारा मधु की गिरने माने आंखों से खारा। गिरिराज गोवर्धन में ये जो सरोवर है ये सब क्या चीज है? जलप्रपात है ना, ये आंखों के आंसू की धाराएं हैं प्रेम की। ओ कृष्ण को हमने स्पर्श किया। इसी तरह से केवल यही नहीं, फलों को, ऐसा कोई फल नहीं है जो गिरिराज गोवर्धन में नहीं है। और कृष्ण और कृष्ण के सखाए जाते हैं, गायें प्रेम से घास चरती हैं, पानी पीती हैं, और सखाओं के लिए जब तरह के फल छाया और सबकी व्यवस्था करती है। केवल यही नहीं, अन्न भी वहां पर होता है सुयवस। नंदवा तो गेहूं की रोटी खाएंगे ना, क्या करेंगे? तो ये कहां से सब आएगा? उनके तराटी में खेते हैं ना, ऊपर से पानी आता है, अपने आप सिंचाई होती है, बड़ा सुंदर उसे फसल होती है। कृष्ण के क्रीड़ा के जितने प्रकार के साधन है वहां पर हो सकता है, सब प्रकार के होते हैं, तरह तरह की कंकराएं हैं, गुफाएं हैं। कृष्ण के बैठने के लिए सिंहासन है, बजाने के लिए
बाजनशीला
एक है, बजाते हैं लकड़ी से तो वो बजती है जैसा थाप जैसा, दोना पेड़ हो जाता, उसी में मट्ठा घोल दूध जो कुछ भी मक्खन खा, ये सब गिरिराज गोवर्धन सब प्रकार से सेवा करते हैं। और एक सेवा करते हैं जो दूसरे के लिए संभव है, वो क्या
है?
गोप और गोपियों के लिए और कृष्ण से मिलने के लिए अराशस फली इत्यादि और गुहाएं उसके लिए,
उसके अंदर पलंग आदि।
कृष्ण का सबसे प्रिय स्थान क्या है? राधा कुंड। राधा कुंड कहाँ है? मानो गोवर्धन के दो नेत्र श्याम कुंड। इस तरह से कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ है। ये उद्धव के लिए भी संभव नहीं है और महाराज युधिष्ठिर के लिए, इसलिए युधिष्ठिर इत्यादि सब यहाँ पर राधा कुंड में तपस्या कर रहे हैं। और उद्धव जी कहाँ तपस्या कर रहे हैं? अभी तक भी घास बन करके भी गोपियों की चरण भेड़ी को हम कर
सकेंगे।
वो सब राधा कुंड और गोवर्धन का एरिया है। नारद जी तो वही पासी में तपस्या कर रहे हैं, हम राधा कुंड में तपस्या करते हैं।
भावना जो आधी है
होने से भी राधा कुंड में होनी सही हो जाएगा और राधा कुंड में कर्मी बसे हुए तो वो क्या उनको वही फल मिलेगा भावना के ऊपर।
युधिष्ठिर महाराज जी से उद्धव की भावना और भी
बहुत उन्नत है, उनसे भी गिरिराज जी की उन्नत। कहते हैं कि गिरिराज की शिलाएं गोपियां देख रही हैं, गिरिराज जी की शिलाएं द्रवित हो जाती हैं किंतु हम द्रवित नहीं होती हैं कृष्ण को देखकर। ये कृष्ण का स्पर्श कर सकते हैं गिरिराज गोवर्धन अपने चरणों से हाथों से, हम नहीं, कृष्ण अपने चरणों से हमारा स्पर्श नहीं करते, ये उनको सौभाग्य। कृष्ण के लिए भोजन बना करके वो देती हैं, देता है गिरिराज गोवर्धन फल, हम तो ये सब दे नहीं सकते। सब प्रकार से गोपियां देखते हैं कि हमसे ये सुख और ये सेवा करते हैं। इस प्रकार से गोपियां गोवर्धन पर्वत की भूयसी प्रशंसा करती हुई कहने लगे। जो गोवर्धन केवल मात्र कृष्ण के चरण स्पर्श से आनंद विभोर होकर के पुलक श्वेत अश्रु प्रभृति किसी के द्वारा प्रसन्न नहीं हो जाते, बल्कि बलदेव और गोपालकों के साथ लाखों करोड़ों धेनुओं की भी सेवा करते हैं। उद्धव जी धेनुओं की सेवा, सखाओं की सेवा और सब नहीं कर सके, जो विशेष के लिए भी संभव है, किंतु गिरिराज ये सब करते हैं। इसलिए ये कह रही हैं कि बलदेव के साथ में भी, गोपालकों के साथ में भी, असंख्य संख गायों के साथ में भी गोवर्धन पर्वत पर ये कृष्ण आरोहण करते हैं और सबका यथाजोग्य सम्मान सो गो जल। इसका कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास में धन है, जो धन है किंतु धन के द्वारा सेवा नहीं कर, उसको अपने लिए रखते और मन से सेवा करते हैं। और जो लोग जिसके पास में धन है वो तन मन धन सब प्रकार से इंद्रियों से सब प्रकार से सेवा करते हैं, तो दोनों में से तो वही हो जो सब प्रकार से सेवा करते हैं। तो यही पर कह रही है गोपियां, काय मन और वाक्य धन प्राण सभी के द्वारा जो सब कृष्ण की सेवा में नियुक्त करते हैं, इसलिए वो यथार्थ दास। जो लोग आलस्य वशतः या कृपणता वशतः देह और धन, ये धन भी नहीं अर्पण करते शरीर नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, वो मन ही मन केवल मात्र वचन के द्वारा सेवा करेंगे, वचन के द्वारा सेवा करेंगे, वचन के द्वारा सेवा होता है। सबको भगवान का भजन करना चाहिए, इसमें क्या पैसा लगता है, भगवान की खूब सेवा करो, भगवान का अर्चन करो। जन्माष्टमी के समय में हजारों लाखों जितना पैसा है उसके द्वारा सेवा, तुमने क्या किया, हमने तो सेवा किया सबसे करा दिया, तुमने क्या किया, तुम्हारा कितना खर्च हुआ, कितना परिश्रम है किया, दूसरों से कराया, ऐसा नहीं। इसके लिए कह रहे हैं जो लोग आलस्य से अथवा कृपणता वशतः देह और धन आदि सेवाओं का अर्पण न करके केवल मात्र वचन और स्मरण के द्वारा कृष्ण की सेवा करते हैं, वो लोग भजन विहीन नहीं होने पर भी, भजन विहीन नहीं कहा जा सकता जो भजन नहीं करते हैं, कुछ कुछ है किंतु उनको श्रेष्ठ भक्त नहीं कहा जाए। श्रेष्ठ भक्त कौन है, जो अपना सर्वस्व उनकी सेवा में, जैसे विदुर जी, जैसे सुदामा विप्र, ये कृष्ण की द्वारका की सेवा के लिए समझ में। सुदामा जी के ऋणी कृष्ण किस लिए हुए, इतना सा मंगनी मांग करके, भीख मांग करके, कूद चावल का कूद अथवा चिपिटक माने चीड़े का कूद, वो पोटली में गंदी पोटली में बांध करके ले गए और यहाँ पर रख लिया, देखा जैसे यहाँ वहाँ कहाँ रखेंगे, कृष्ण को पता भी नहीं चलेगा, यहाँ पर रखेंगे और गए। कृष्ण ने पूछा जो भाभी ने कुछ दिया है भेजा है, तो वो चुप रहे, कुछ उन्होंने उनको वहाँ यहाँ से तो ले गए साहस करके दे देंगे, किंतु उनका जब वैभव देखा तो उनका माथा में चक्कर आ गया,
बाबा
इतना वैभव और इतना सुस्वादु भोजन यहाँ और सब प्रकार की व्यवस्था है, यहाँ सूखा चिवड़ा कृष्ण को कौन दे, देने में भी लज्जा है। सोचा जी यदि खाए कृष्ण किसी काम से भी तो उनको हजम ही नहीं होगा, ऐसा
अंदर कट जाएगा छला हो जाएगा,
इसलिए देखा जी इसमें कोई रस नहीं है, खुद में सूखे हुए चावल इसलिए नहीं। वो भी अपने घर का नहीं था, मंगनी मांग करके ले, और कृष्ण ने उसको निकाल करके उसमें से एक मुट्ठा लिया, दूसरी मुट्ठी ली, और तेनु रुक्मिणी जी ने उनको अब क्या हमको भी दे देंगे, हम सभी को भी वैभव तो दे दिया। उन्होंने देखा किंतु उन्होंने सुदामा जी ने नहीं देखा, उन्होंने कहा जिसे इसके पास में कुछ नहीं था कहीं से मांग करके ले आया बेचारा, और हमको खिलाने के लिए ले आया दिया, मैंने एक मुट्ठी दो मुट्ठी खाई, अब इसके बदले में क्या दे? कृष्ण क्या नहीं दे सकते, किंतु क्यों सूत्र जी क्या दे, मुझे तो अभाव नहीं है, मैं यदि अपना सब कुछ दे करके भी भीख मांग करके तब इसको देता तो मैं समझता जो मैं इनके ऋण से उन्हें हुआ, किंतु हमको तो भीख मांगना है नहीं, हमारे पास में तो लक्ष्मी जी वर्तमान है, जो कुछ चाहेंगे वो सब अनायासी मिल जाएगा, हम सब कुछ दे देंगे तभी हमारा लाख भाग का एक भाग भी नहीं देना, इसलिए तो मैं इस कार्य रह जाऊंगा। इसलिए उसको सामने कुछ नहीं दे करके पीछे से कुछ वैभव दिया, किंतु उसका ऋणी बन करके कृष्ण ऋणी हो गए, और गोपियों के भी इसीलिए ऋणी है, कृष्ण उनकी सेवा के बदले कुछ नहीं दे पा, कुछ भी नहीं दे पा, सब समय गोपियां ही उनकी सेवा करती सब प्रकार से, इसलिए गोपियों की ऋणी है, इसलिए कहते हैं न पारे हम निर्वद्ध संजुना। तो ऐसा कोई यदि भक्त हो जो अपना सर्वस्व दे दे कृष्ण हो के सब कुछ दे दे, तो तन मन वचन धन बुद्धि विद्या एनर्जी जो कुछ सब दे कृष्ण उसको, जैसे गोपियों ने क्या नहीं दिया सर्वस्व, दूसरा कोई उदाहरण ही नहीं है। इसलिए इसको श्रेष्ठ भक्त कहा जा सकता है, निजे कोनो संबल ना रखिया माने अपने लिए कुछ नहीं रखा, ये मेरा है, जैसे निष्किंचन कहते हैं, निष्किंचन माने क्या, माने कि हमारा कुछ अपना रख देते हैं घर में, हमारा कुछ रुपया है, हमारी कोई संपत्ति है, हमारी जमीन है, कोई जायदाद है, बगीचा है और कोई चीज, और उसको रख करके और ऐसे मुंह से कह देने से तो होगा नहीं, इस सबक तो कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ उसके लिए, अब मान लें कि अलग से रहेगा ना तो उसके लिए हमको कुछ देखना पड़ेगा, मान लें कि अपना कुछ है, और यदि कृष्ण ही कहा है तो कृष्ण ही उसकी देखभाल करें, उन्हीं मालिक होंगे, इसलिए कहते हैं कि निजे कोनो संबल ना रखिया, आत्मसेवार कथा एक बार भूलिया गया, आत्मसेवार माने क्या, अपनी कोई भी स्वार्थ न रख करके संपूर्ण रूप से कृष्ण का स्वार्थ, गुरु का स्वार्थ, वैष्णव का स्वार्थ देख और अपना कुछ न रहे, मैं भी उनका हो गया और हमारा जो कुछ है उनका, पहले की पत्नी होती थी ऐसी, पति से विवाह होने पर पत्नी का जो कुछ होता था वो पति का हो जाता था, सब कुछ हो जाता था, लिखाई पढ़ाई की कोई रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, आजकल नहीं होगा, आजकल वो सब आजकल तो पहले दूसरी सब रीति बन गई, इसलिए कहते हैं आप अपने स्वार्थ की तनिक भी इच्छा न रख करके कृष्ण सेवा ही जीवन का प्रधान लक्ष्य रहे, और तन मन वचन धन इत्यादि सर्वस्व के द्वारा कृष्ण की सेवा करने वाला ही उनका यथार्थ वही हरिदास पर, इसलिए हरिदास साहब इनको गिरिराज गोवर्धन को सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया गया। और तो सब बतलाया है पहले। का गोपी कैयम बनम नय बोलार बेनु स्वने कलपदै समृद्ध शंख अष्टंगनम गतिमतारं कुलकस्तरुणा निर्योग पास दुत लक्षण योगि चित्रम कते कते गोपियां और आविष्ट हो गई। ये पूर्व राग में कह रहे का गोपी कई गोप कई अनुबनम नये तो उदार बेनुष बने कल पते और एक चीज की छूट गई। इस टीका ने कुछ बताया हंताय मंत्र बदला ये जो कहा ये किसने कहा किसी ने कहा है सनातन गोस्वामी जी ने कहा ये गोपियों ने कहा और रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है कि ये राधिका मुख चंद्रात राधिका भक्त चंद्रात। सनातन गोस्वामी कहते हैं गोवर्धन जयति शैलपु राधिराजो गोपिका भी उदिता हरिदास वर्य। अर्थात सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि गोपियों ने इसको कहा हरिदास वर्य और रघुनाथ दास गोस्वामी जी कह रहे हैं गिरिज हरिदास श्रेणी पर एक ही नाम दे राधिका भक्त चंद्रा राधिका जी ने कहा। ऐसे देखने में मालूम होता है ये दोनों में कुछ भेद है किंतु भेद नहीं। गोपियों ने कहा और राधिका जी ने कहा इसमें क्या भेद है। राधिका जी तो गोपियों में से ही है इसलिए गोपियों ने कहा या राधिका जी स्पेशल राधिका जी ने कहा ये बात नहीं इसमें कोई अंतर।
गोपी का भी उचित गोपी ने कहा गोपी का नाम नहीं दिया
सनातन गोस्वामी ने नाम नहीं दिया उन्होंने नाम दिया गोपियां कुछ विरह में खिन्न होकर के वो फिर कहने लगी ये हे सखियों सुबल सिदाम आदि गोप बालकों के सही गोप गो गोप कई गो माने गाय लाखों को की गायों को लेकर के और सखाओं को ग्वाल बालों को लेकर के कृष्ण गोचारण करने के लिए गए थे। नय तो उदार बेणु स्वनय और उदार होकर के बड़े उदार होकर के अथवा बेणु बजा रहे हैं कैसे उदार बेणु बजा रहे हैं किस लिए उदार कहा गया। कृष्ण की बंसी में कोई भेद नहीं है उसके स्वर के सुनने में कोई भी सुन सकता पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी हैं सिद्ध सिद्ध जितने भी लोग हैं सभी लोगों के लिए वो सुलभ है और जो जिस रूप में है उससे भी उसको उससे उन्नत स्तर में वो बंसी ले जाए। गोपियों के लिए भी वही और लोगों के लिए हिरणों के लिए भी वही किंतु अपने अपने अधिकार और योग्यता के अनुसार में वो बंसी ध्वनि वहां पर अधिक काम करती है या काम कम करती है इसलिए उदार कहा। सूरज को हम लोग उदार कहते हैं क्यों गंदी जगह हो अच्छी जगह हो बुरी जगह हो ऊंची हो नीची हो सब जगह सूर्य की रोशनी जाती है। हवा भी ऐसे ही उदार ऐसे ही उदार अस्पंदनम गतिमता स्पंदनम माने जो गति वाले हैं उनको स्तब्ध कर स्थावर बना दें और पुलक स्तरु नाम जो स्थावर हैं उनको पुलक और रोमांच चेतन जैसा उनके लक्षण बनाए जाए। वो कृष्ण का कैसा सुंदर रूप है निर्जा निर्जोग पाठ तलक्षण योग विचित्र निर्जोग और पाठ धारण किए गए निजोग कहते हैं
कल भी जरूरत है,
निजोग कहते हैं रस्सी को जो कि जोग युक्त करती है, बछड़े और गाय को जो जोग युक्त करती है। कैसे? बछड़ा यदि दूर हो जाएगा तो गाय दूध नहीं देगी, बछड़े को निकट रखना है, किंतु ऐसे निकट रखता है रखना है जो कि दूध न पी ले पूरा, हमारे लिए भी दूध कुछ रहे। इसलिए बछड़े को योग रखने के लिए उसका मुंह कहाँ रहे?
गाय के पास,
गाय के पैर के पास में रहे, किंतु वो दूध न पी सके, ऐसा उसको बांध करके रखे। यह हुआ निजोग, निश्चित रूप में जोग कराने का। और पास किसको कहते हैं? जो गाय दुष्ट होती हैं, दूध में पैर चलाती हैं, उनके पैर को बांध करके जरा जो पैर न चलाए और उसको दुखा। कृष्ण ने क्या किया? अपनी पगड़ी पर, पगड़ी लगाते हैं ना, निजोग को तो यहाँ पर लंबी होती है, वो पाट की रस्सी होती है और उसमें झालर लगाया हुआ होता है, उसको यहाँ पर
बांध दिया।
मैंने किसी ढंग से नहीं,
ऐसे
बस अल्लाहपन से बांध दिया। और पास, पास को क्या यहाँ पर फेंक दिया या ऐसे झूला दिया। गोपो का यह वेश स्वाभाविक और परम सुंदर है, दूसरों के लिए नहीं, किंतु गोपों के लिए ये स्वाभाविक, गोपियों को बहुत ही अधिक अच्छा लगता है। दूसरा इसका अर्थ होगा निर्जोग, निश्चित रूप से निश्चिद्र कृष्ण से जो जोग करा दे, ये हुआ निर्जोग। और पास ऐसे उसको जकड़ करके बांध दे जो कृष्ण से कभी अलग ना हो सके। अर्थात कृष्ण का यह रूप जो है इतना सुंदर मनोहारी है और स्वाभाविक है, ये गोपियों के चित्त को लेकर के बांध देता है। चरण कमल से, जैसे गायों के चरण कमल से, तो कृष्ण के चरण कमलों से, या जैसे उनको बांध दे, ऐसे इन्होंने रस्सी को यहाँ पर लगाया। वो निर्जोग माने निश्चित से जोग करा देता है, आकर्षण करके उनके आंखों को अत्यंत इतना बला लगता है कि स्वरूप को वो भूल नहीं पाती है, इसलिए इनके लिए निर्जोग हुआ। और पास इसलिए, पास बांध करके कृष्ण से कभी उनको दूर नहीं, इसलिए गोपियां उसको कहती हैं निर्जोग पास। आज यहीं तक रहे,
कीर्तन में जाना है।
जय श्री। श्याम सुंदर जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय ब्रजवासी।